श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदाम्यहं तदाति स्वदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखानितं स नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नाम्ने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी आश्चर्यदेशहारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ध्रुव महाराज अभी जंगल में जा रहे हैं, रास्ते में उनको श्री नारद जी भेंट हुए। नारद जी ने आकर के ध्रुव महाराज को अपने मस्तक छू करके उनको आशीर्वाद दिए और उनको पूछने लगे कि बेटा तू क्यों जा रहे है, उनको निराश करने लगे, थोड़ा हताश करने लगे हर प्रकार से, लेकिन कर करके देखे कि वो मानने वाला है नहीं, सुना उन्होंने सीधा ठोक मना कर दिया, ये आपके उपदेश मेरे लायक नहीं, दूसरा कैंडिडेट देखिए। तो नाराज नहीं हो जाएगी, तो अंदर से खुश हो रहे थे, टेस्ट ले रहे थे। तो बोले तो फिर कहाँ जाएगा, तो पता है कि मैं तो जाऊँगा भगवान पास, इतने बड़ा बड़ा आशा है, मेरे दादा परदादा से बड़ा पोजिशन मुझे चाहिए, तो आप कृपा करके कुछ उपाय बताइए, मेरे बड़ा आशा है, आप समर्थ हैं, ब्रह्मपुत्र हैं, बड़े विवेकी हैं, बड़े विद्वान हैं, आप बताइए। तो नारद जी तो आए थे बताने के लिए, फिर चेक कर परीक्षा कर रहे थे और देखे कि बिल्कुल उचित पात्र है, तो यहाँ ना बता करो कहाँ बताएंगे। तो भगवान नारद ने और विलम्ब नहीं किए, तुरंत ध्रुव को बैठा करके उनको बोलने लगे, बोले ध्रुव मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूँ आपके पर, आप जो मुझे पूछ रहे हैं कुछ बताइए, इस प्रकार मेरा इच्छा पूर्ण करने के लिए आपकी जो महान इच्छा है कि ब्रह्मा से भी बढ़कर के पदवी आपको प्राप्त हो, ऐसे राज्य प्राप्त हो, तो ये कोई छोटी बात है, बड़ी बात नहीं, धर्म अर्थ काम मुख्य सर्वार्थ सिद्ध हो जाता है कोई भगवान के शरण में जाता है। तो तेरी माँ ने तुझे जो उपदेश दिया है कि पद्म पंकज पलास नेत्र श्री भगवान के चरण में शरण में जाओ, उनकी भजना करो, बिल्कुल वही सर्वथा अनुकूल कार्य है, इसी कार्य को करो। कितने प्रकार की व्यथा हो वो भगवान के आश्रित होने से सब कुछ पूरा हो जाता है, तो आपके लिए भी यही अनुकूल है, आप करो। इसके लिए कोई उम्र के, बुद्धि के, बाकी कोई पात्रता का कोई आवश्यकता नहीं, उसको ही करना उचित है। तो ध्रुव जी मानो कहे, नारद जी मुझे तो माने कही है, मैं तो करूंगा ही, लेकिन कैसे, कहा कि आप तो भेंट होगी, आप थोड़ा और कुछ बता दीजिए ना डिटेल। तो फिर जब जिज्ञासा होता है तब तत्वदर्शी होते हैं, वो बोलने के लिए विवश हो जाते हैं। भगवान ही कहते हैं ये तत्व ज्ञान को जानने के लिए यही विधि है। क्या विधि है? तद विधि प्रणिपात परिप्रश्न सेवा। इस प्रकार जो तत्वदर्शी ज्ञानी और तत्वोपदेश देते हैं, ये तीन काम करने से, प्रणतः पात उनके शरण में जाओ, उनकी सेवा करो और उनको जिज्ञासा करो, इस तीन क्रिया में आप तत्व ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो नारद जी से महान तत्वदर्शी के ध्रुव जी उनको दंडवत प्रणाम किया, उनके बिल्कुल समागत हो गए, बोले आप ही बताइए मेरा काम कैसे पूरा होगा। तो नारद जी तुरंत बोल रहे अति प्रसन्न चित होकर के नारद जी ने उनको तुरंत द्वादश मंत्र से दीक्षित किए। सबसे पहले मंत्र दिखाने के सूत्र बताए, बोले बेटा मैं तुझे इस स्थान बता रहा हूं, पहले आप जाओ, आप भगवान को पाना चाहते हैं ना जंगल में, तो ऐसे ही थर्ड क्लास जंगल में जाने से नहीं मिलेंगे, यहाँ कोई कांटे भी पड़े सब है, बबुल पड़े, यहाँ कोई ढंग का है नहीं। मैं तुझे बहुत बढ़िया स्थान जंगल भगवान बताता हूँ, जहाँ जाने से बड़े जल्दी आपकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। तो नारद जी तुरंत उनको बोलते हैं, आपने तत्तात गच्छ भद्रं ते जमुनाया तटं सुचि, हे तात, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जल्दी जमुना तट, जमुना के किनारे जो पवित्र स्थान है, पुण्यं मधुवनं जत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे, जो महापवित्र मधुवन है वहां जाओ, क्योंकि यहां नित्यदा हरे, हरि सान्निध्य को नित्य प्राप्त हुआ है, भगवान हरि मधुवन में हमेशा रहते हैं, नित्य रहते। जत्र सान्निध्य नित्यदा हरे, जहां हरि की सान्निध्य नित्य प्राप्त है, इसी महापुण्य पावन जमुना तटवर्ती इसी मधुवन का जाओ। भजन तो करके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, भजन आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अनुकूल स्थान, अनुकूल वातावरण में करने से उनका फल बहुत जल्दी प्राप्त, बड़ा इफेक्टिव होता है। इसलिए भजन अनुकूल का स्थान भी बताया गया है, भजन के अनुकूल स्थान में स्वयं नारद जी आज ध्रुव को बताते हैं कि आप ऐसे दूसरे जंगल में जाकर भजन मत करो, आप तात गच्छन्ते पुण्यं जमुना तट सुचि, आप जमुना तटवर्ती पुण्य मधुवन को जाओ। मधुवन वृंदावन में द्वादश कानन है, 12 वन है, जब भगवान ने अपने बाल लीला किए थे, तो इसे 12 वनों में से मधुवन एक है। जो लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, एक माह तक पद ब्रज में चल करके वो जानते हैं, सबसे पहले मथुरा में विश्राम घाट में स्नान करके सबसे पहले मधुवन जाते हैं, वहीं से शुरू होता है, सबसे प्रथम वन मधुवन है, मथुरा भी मधुवन के अंदर ही आता है, मधुपुरी, मधु राक्षस के नाम से मधुपुरी बना। तो इस मथुरा का जो सबसे श्रेष्ठ स्थान वो वन का नाम है वो मधुबन है, जहाँ पर ध्रुव जी ने सत्य युग में आकर तप किए थे, नारद जी उनको ही भेजे थे जब नाम के धरोहर थे। सबसे पहले जो ब्रजमंडल में जाते हैं 84 पुरुष में विश्राम घाट में स्नान करके सबसे पहले मधुबन जाते हैं। मधुबन में सबसे प्रथम पड़ाव होता है, वहाँ पर ध्रुव लीला, ध्रुव लीला धूमराज के ध्रुव नारायण के दर्शन करते हैं, कृष्ण कुंड में स्नान आदि करते हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं मधुबन के बाद तालवन, दूसरा वन तालवन है, वहाँ बलराम जी वध किए थे धनुकासुर का। तालवन, तालवन से पड़ाव डाल करके वहीं से उठ जाते हैं मधुबन, तालवन, कुमुदवन, कुमुदवन जाते हैं। कुमुदवन में आज भी कुमुद बिहारी भगवान है, कहते हैं कि यहाँ वो गंगा सागर कुंड है जहाँ कपिल भगवान है, कपिल तीर्थ है। कुमुदवन से फिर भक्त लोग जाते हैं बहुला वन में, बहुला वन में जो बहुला गाय की महिमा है, बहुला गाय को जो वो शेर ले जा रहा था फिर उनको छोड़ दिया, धर्म की कहानी है। तो भोला वन में रुक करके फिर वहाँ से सीधा चल पड़ते हैं राधा कुंड के लिए। ये जो राधा कुंड, गोवर्धन, बरसाने, नंदग्राम, ये सब वृंदावन के अंदर आता है। तो ये तीन वन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुला वन, ये चार करने के बाद फिर वृंदावन प्रवेश करते हैं। तो वृंदावन में सो घूम करके फिर पहुंचते हैं सीधा काम्यवन, गोवर्धन परिक्रमा करके कामा जाते हैं। कामा में 2-3 दिन रुकते हैं, कामा से फिर दोबारा वृंदावन आते हैं, बरसाना नंदगांव होकर के फिर जाते हैं खदीर वन। खदीर वन में आता है जमुना के पश्चिमी तट पर, ये 7 वन है, याद रहा किसका? ये अभी जो हमने 7 वन का नाम लिया, जमुना के पश्चिम तट, पश्चिम दिशा पर है, भूल गए? सबसे पहले मधुवन, फिर कुमुदवन, फिर कितने हो गए, फिर कामा, कामेवन, कामेवन के बाद फिर खदीरवन, कितने हो गए? वृंदावन, एक जो है ना, जो नंदगा बरसाना गोवर्धन वृंदावन का है ना, 7 वन है वन, ये 7 वन जमुना जी के पश्चिम तट पर। तो इसके बाद में खदरी वन में से सही खिलन वन होते हुए फिर जमुना पार करेंगे, जमुना पार करके पूर्व तट पर जाएंगे, सबसे पहला वन आएगा भद्रवन, भद्रवन, भद्रवन के बाद आएगा बेलवन, फिर बेलवन के बाद आएगा भंद्री वन। 5 वन होता है जमुना के पूर्व तट पर, गिन लीजिए, भद्रवन, बेलवन, भंद्री वन, लोहवन और महावन, महावन गोकुल से महावन। तो ये 12 वन है वृंदावन में जहाँ पर भगवान अपने लीला किए थे। तो अब आज भी अनेक भगवान की अनुयायी भक्त तो जाकर पदब्रज में एक एक मास, डेढ़ मास चलते चलते इस जगह पर जाते हैं ये वन दर्शन करने के लिए। तो इस प्रकार इस जगह पर क्यों आज भी लोग जाते हैं, क्यों कि भगवान की सानिध्य प्राप्त किया, स्थान लीला भूमि है, यहाँ पर भजन करने से उनका जो पोटेंशियल है, यहाँ पे भजन करने से इतना है, वहां करने से 1000 गुना ज्यादा, 1000 गुना सीधा ज्यादा मिलेगा। जैसे आजकल भारतीय लोग ज्यादा भारत में नौकरी नहीं करते, चले जाते हैं विदेश, है ना, अमेरिका में नौकरी करेंगे तो यहाँ रुपया नहीं मिलता, यहाँ क्या मिलता है, डॉलर, एक डॉलर यहाँ के 60 रुपया, तो इसलिए कमाते हैं, वहां से 10 डॉलर कमा लिए तो यहाँ 650 रुपया, है ना। इसी प्रकार जिसको धन कमाना है इस पर 5 डॉलर यहाँ से हो जाएंगे बिना, तो इस प्रकार जिसको भजन के फल कमाना है नोट, उनको इस जाएंगे जहाँ 1000, एक नोट 1000 नोट के बराबर हो, इतनी बड़ी कोई इतना करेंसी नहीं है, सीधा 1000 गुना हो जाए। और वो अगर पुरुषोत्तम मास में करे तो अनंत गुना हो जाए, है ना। तो इसलिए नारद जी भी ध्रुव को बताए, बोले कि यहाँ नहीं। ध्रुव जी कहते हैं कि वैष्णतीपुरी में थे मनु महाराज की, विठूर कानपुर के पास, उनको बोले तुम जाओ वृंदावन। तो वहां से चलते चलते बालक ध्रुव वृंदावन आए, मथुरा के किनारे ध्रुव टीला में जाकर तब की। तो सबसे पहले स्थान चुनकर भेजते, बोले स्थान में जाना पड़ेगा। नारद जी ने बताया स्थान में जाओ। इस स्थान में जाकर क्या करो, स्थान की महिमा बता दिए, क्या ये हरि की पद चिन्ह से अंकित है, जमुना के किनारे है, बड़े पवित्र है, वहां जाकर क्या करूं। तो नारद जी ने, बालक है ना, आपने मन को खोल करके सारे समझा देते हैं, क्योंकि बच्चा है, कोई ना समझ, कोई गड़बड़ ना करें, इसलिए बैठा करके बड़े ध्यान से ढंग से समझाते हैं। बोले देखो पहले तो मधुबन जाओ, यहाँ करने आप पहले जाकर जमुना में 3 बार 2 दिन में नहाना, शुचिता सबसे पहले आवश्यकता है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हमारे भारतवर्ष को धर्म क्षेत्र कहा जाए, धर्म के है भगवान हमेशा इस भारतवर्ष में अवतरण लेते हैं, लेकिन इतने हम लोग सब पतित हो गए हैं, जितने बड़े बड़े देवालय हैं जहाँ देखो सारे कचरा भरे पड़े, सारे मंदिर में और देखने लायक नहीं, सारे गंदगी है ना, नहीं सब पुराना। लेकिन इसी को प्रभुपाद जी ने देखो, इसी के लिए लोग धर्म को छोड़कर जाते हैं, देव देवी पूजा करते हैं, बोली सारे गंदगी क्या करके रखे पूजारी लोग, कोई सफाई नहीं खान पान में, रहन सहन में, पूजा में। तो इसीलिए लोगों का धर्म के प्रति घृणा भाव आ गया और छोड़ के छोड़ के करते। तो प्रभुपाद जी ने फिर किया कि आप जो इस्कन मंदिर और दूसरे मंदिर की देखो, आपको क्या नजर आता है बताइए, एक विशेष नजर पड़ेगा क्या, साफ है ना, सफाई में निश्चित अंतर आएगा। ये जो भी हो छोटे मोटे हो, लेकिन नीट एंड क्लीन, सूची से सुचिता से पवित्रता से भगवान साफ है, साफ सुथरा नहीं करेंगे भगवान के साथ। तो इसलिए सबसे पहले सूची, तो इसलिए बोले बेटा जमुना जी के जल में 3 बार दिन में स्नान करें, फिर क्या करें ना, स्नान करने के बाद एक आसन बना, आसन बैठना, कैसे आसन किस प्रकार सारे बता दी, इस प्रकार आसन। आसन के बाद देखिए पूरा अष्टांग योग सिखा रहे हैं, अष्टांग योग में सबसे पहले यहीं से शुरू होता है ना, पहले जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है, एक एक करके उनको सिखाने लगे सब सारे जम नियम। जम मतलब जो नहीं करना है, नियम मतलब जो करना है ना, जैसे हमारे हरे कृष्ण संस्था में है, सबसे पहले जम दिया गया, हमारे योग है क्या, चाय नहीं पीना है, पान बड़ी सिगरेट नहीं खाना है, मांस मछली अंडे नहीं खाना है, ये नहीं करना, ये सब जम जो नहीं करना, नहीं करना। फिर नियम क्या करना है, सोना माला नित्य जप करना है, सुबह उठना है, मंगल आरती जाना है, तुलसी पूजा करना है, ये सब नियम। तो क्या नहीं करना और क्या करना, ये जरूर शुरुआत हो। उसके बाद कैसे बैठना, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्या क्या छोड़ना है, किस किस को ध्यान करना, सारे विधि बताने लगे। बता करके बोले देखो फिर क्या करें, तो ध्यान करना तो है, लेकिन ऐसे शून्य ध्यान नहीं, भी आजकल जो करते हैं, ध्यान करना है तो किसी को करना है, ध्यान के केंद्र बिंदु होना चाहिए क्या, बोले भगवत विग्रह। बोले अगर संभव हो तो एक बढ़िया विग्रह व्यवस्था करना, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पाणी, ऐसे नारायण भगवान विष्णु की मूर्ति अगर बनी बनाई हुई बाजार में मिल गया तो ले आना, है ना, अगर नहीं मिला बोले कई धातु के हो, काष्ठ के हो, मिट्टी की हो, 8 प्रकार की भगवत विग्रह होता है, आलेख्य हो इस प्रकार के, मृणमयी, धातुमयी, मणिमयी, कई प्रकार से विग्रह। अगर वो कुछ नहीं मिला बोला हमारे पास पैसा पैसे कहाँ लेकर लाऊंगा, कुछ नहीं मिलेगा तो फिर क्या करना, जमुना किनारे मिट्टी है पानी डाल करके और बना देना विग्रह को, बना देना मृणमयी मिट्टी का विग्रह बना देना। कैसे बनाओ, डिजाइन बताए, मुंह कैसा होना चाहिए, आंख कैसा होना चाहिए, बाल ऐसा होना चाहिए, चरण ऐसा होना चाहिए, हस्तकमल इस चार हाथ होना चाहिए, उसमें इस प्रकार के रंग देना, पित्त वसन है, पुष्प मणि है, शिवत अंकित चिन्ह है, शंख चक्र दापाणी है, केवल कुंडल है, मुकुट है, सारे बता दिए भगवान के एक एक अंग के वर्णन के रंग और आभूषण के आभरण के साथ बता दिए, इस प्रकार बनाना बना करके बोले फिर न फिर जंगल से फूल तुलसी तोड़ना, प्रतिदिन स्नान काम कर फूल और तुलसी ला करके माला बना करके उनको अर्पण करना, प्रतिदिन माला अर्पण करना, उनके चरण में तुलसी अर्पण करना, और केवल अर्पण नहीं अगर संभव हो उपचार से थोड़ा पूजा करना, धूप दीप गंधा पुष्प नैवेद्य आदि उपचार के द्वारा थोड़ा पूजा करना, अगर संभव ना हो वस्तु नहीं मिला तो मनो में मनसा कर सकता, मन में पैसा नहीं लगता, मन में कितने पवित्र जल लाओ, पंचामृत में स्नान कराओ और बढ़िया सा फूल ला करके गजरा माला पहनाओ, तुलसी तो दला चंदन सचंदन तुलसी तो अर्पण करो, ऐसे चांदी सोने से ब्रेड से लाकर भोग लगाओ, आरती उतारो, मन में करने से क्या पैसा थोड़ा लगता, अगर है किसी का सामर्थ्य तो करो, नहीं सामर्थ्य तो मन में करो तब भी फल मिलेगा। इस प्रकार के यही ध्यान है, इस प्रकार के एक एक काम करो तो मन लगेगा, अभी ये करूं, अभी ऐसे करूं, अभी ये फूल माला पहनाया, ऐसे बढ़िया वस्त्र पहनाया, ऐसे ये माला पहनाया, ऐसे ये पहनाया मुकुट पहना, इस प्रकार से मन में सब करते रहो, ये सब करने की इस प्रकार ध्यान करो, और यथाविधि जंगल में जो मिलेगा अब बना करके तो राजभोग खिला नहीं सकता भगवान, तो तरह बस बुझे नहीं, तो जंगल में जो फल मूल मिलेगा उसमें से भोग लगा भगवान, इस प्रकार करके भोग लक्षण पूजा अर्पण करने के बाद फिर क्या करना बेटा, फिर आसन लगा कर बैठ जाना, बिल्कुल भगवत चरण को ध्यान करके आसन में बैठ, खाली बैठो नहीं, नहीं बैठने से नहीं, एक मंत्र जप करना पड़ेगा। देखिए भगवान नारद ने विधि बताते हैं सत्य युग में, शुरुआत में बताते हैं, आजकल नहीं पहले से जमाने में भी यही विधि है, अगर करना है भगवान प्रसन्न भगवान के विग्रह को पूजा करना होगा विधि अनुसार, फिर पूजा आदि करने के बाद फिर उनको ध्यान करना होगा मंत्र के साथ, तो फिर मंत्र दिए, कौन सा मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिए, इसी मंत्र को जप करना, इसी मंत्र के द्वारा तुलसी माला अर्पण करना, तुलसी दल अर्पण करना, मुकुट जो जो वस्तु अर्पण करेंगे इसी मंत्र के साथ करना, ये भी जो मंत्र है। बोले बेटा ये मंत्र का ये प्रभाव है, अगर इस मंत्र को कोई भी व्यक्ति सत रात्र सात दिन सात रात बैठ करके कंटिन्यूस जप करे ना, तो आकाश में देवता लोग चलते हुए दिखाई पड़ेंगे, उसे दिखाई पड़ेंगे जो अदृश्य रूप हैं, यक्ष राक्षस किन्नर है वो सब दिखाई पड़ेंगे, आप दुष्ट इतने शक्ति प्राप्त हो उनको देख सकते हैं, आपको सारा आकाश देखने से दिखाई पड़ेगा, बोल जा रहे हम सर हम देख नहीं सकते, सात दिन में इतने आपको शक्ति दे देगा कोई भी, सात दिन सात रात इस पर जप करो, लेकिन उनके लिए जप मत करो, तो भगवान को सामने रख करके उनकी कृपा के लिए इसको जप करना, ये मंत्र दिए, और जितने मन और इंद्रियों को निरुद्ध करके जप करोगे तो इतने जल्दी आपको फल मिलेगा, ये नारद जी बार बार बताते, मन निग्रह और इंद्रिय निग्रह, सम और दम, सम बोलते हैं मन निग्रह, दम बोलते हैं इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय को निग्रह करना मन को निग्रह करना दोनों को दमन करके अगर इस प्रकार मंत्र के द्वारा भगवान की उपासना करेंगे उनको ध्यान करोगे तो जितने करोगे इतने जल्दी फल प्राप्त होगा, जितने ध्यान केंद्रित करके मन लगाकर करोगे इतने जल्दी फल प्राप्त, इस प्रकार सारे विधि विधान लक्षण सहित उनको बताए, बताने के बाद अब बल्कि बेटा फिर आप सीखे और कोई डाउट, क्योंकि कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, इतने श्रद्धा मन में आ गया, इतनी कृपा उमड़ पड़ा है कि बालक को सब कुछ समझा देना चाहते हैं, आज अगर संभव हो तो करके दिखा भी देते, एग्जाम्पल कभी खुद बैठ कर दिखा भी देते होंगे, ऐसे करो प्राणायाम, ऐसे करना, ऐसे करना, दस सिखा दिए बता दिए, बोले पता एड्रेस पता चल गया ना कहाँ जाना किधर आप चल। फिर भी कोई तकलीफ हो तो याद करना, फिर भी तो सारे कंप्लीट सिखा करके ना करके नारद जी ने ध्रुव बिल्कुल अभी कंफर्म हो गए। बोले अब तो गुरु जी मुझे कर ही डालूंगा, ये तो निश्चित कर डालूंगा। नारद जी ने अंत में उनको प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए। ध्रुव ने आशीर्वाद के लिए दंडवत प्रणाम किए, चरण छुए, परिक्रमा के लिए नारद जी गुरु जी को प्रणाम परिक्रमा करके उनसे आशीर्वाद भरपूर लेकर के वृंदावन की ओर निकले। बालक ध्रुव निकले वृंदावन की ओर अकेले, नारद जी निकले ध्रुव के घर की ओर अकेले, दोनों की विपरीत दिशा। वो घर से आए राजभवन से, वो गए वन की ओर वृंदावन की ओर, और वहां से आए वो राजभवन की ओर गए। ध्रुव जी तो बड़े हर्षित होकर गए क्योंकि नारद जी के पूर्ण आशीर्वाद आज प्राप्त किए हैं। पहले से तो माँ के आशीर्वाद से भगवान को हृदय में बैठा कर ही निकले थे, इतने दृढ़ संकल्प करके निश्चय करके घर से भगवान के संरक्षण के लिए निकले थे, भगवान को मन में धारण करके निकले थे। तो भगवान ने ही अपने प्रतिनिधि नारद जी को भेजे, उनसे भी पूरा प्रकार के सारे उपाय विधि सब सीख करके भरपूर आशीर्वाद लेकर के निकले। तब वहां आकर जब नारद जी आए राजभवन में आकर के देखे तो राजा जी उत्तानपाद जी उनको पदभूत किए, उनको प्रणाम किए, आसन दिए बैठने के लिए। देवर्षि जी आइए बैठिए। देवर्षि देखे राजा मुंह सुखाकर बैठा है, बिल्कुल मुंह सुखाकर बैठा। तो नारद जी ने पूछे बोले राजा क्या हो गया तुम्हारा, ऐसे मुंह सुखाकर बैठे हो? तो उत्तानपाद महाराज कहते हैं कि देवर्षि जी आपको से पता है, क्या बताऊं मैं इतने निष्ठुर इतने नालायक हो गया, एक साधारण स्त्री के गुलाम बन गया मैंने। मेरे 5 साल की बेटा ध्रुव को मैंने दुर्व्यवहार किया और चला गया घर छोड़कर, राजमहल छोड़ करके चला गया। मुझे बड़े दुख होता है कहाँ गया पता नहीं। उनको कोई सिखा दिए कि वन को चला जा, वन को चला गया, छोटा बच्चा है, कोई भेड़ बकरी खा गए हम उसको, भेड़ भेड़िया खा गए हम से राजा बोल करके राजा ने रो पड़ा। मैं क्या करूं बड़े दुख होता है, मैं कितने कठोर हृदय हूं मुश्किल। तो इस प्रकार में बहुत दुख प्रकाश किया उत्तानपाद ने। जब दुख प्रकाश किया तो नारद जी ने फिर बोले कि आप इतने दुखी मत हो, सोचो मत, आपको पता नहीं आपके बेटा ध्रुव कोई साधारण बेटा पुत्र नहीं है, कोई साधारण नहीं, बड़े असाधारण पुत्र है वो। आप देखना सारे दुनिया में उनका नाम फैल जाएगा, और तो ऐसे काम करेगा कि सारे दुनिया में उनका नाम रह जाएगा जुग जुग तक। बोले क्या? नौ जंगल में गया, जंगल में तो भेड़ और शेर उसको खा जाएंगे, बोले कोई नहीं खा सकता उसको, होंगे उनको संरक्षण प्राप्त है। कौन है? तो अकेला गया ना, अकेला गया इसीलिए उनको भगवान के संरक्षण प्राप्त है। तुम जैसे राजा किसको बचा सकते हैं? जो सचमुच रक्षा करने में संपूर्ण समर्थ है वो उनको रक्षा कर रहा है, वो उनके शरण में गया, तो इसलिए कोई उनका बाल बंका नहीं कर सकता। राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के, जिसको हरी रखने लेंगे रख लेंगे उसको कौन भेड़ो शेर खा सकते हैं? कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता उसका, वो तो काम करके आएगा। और काम करने का विधि देखिए, ध्रुव जी जब जंगल को गए छोटे बच्चे कुछ नहीं जानते थे, नारद जैसे आचार्य उनको सिखा देते हैं, सिखाते हैं कि बेटा जाओ केवल बैठ करके नाक कान बंद करके ओम नाम हूं हां करने से कुछ नहीं होगा, नाक कान बंद से विग्रह सेवा करना पड़ेगा। आजकल बहुत बड़े बड़े संत पंथ निकलते बोलते ये क्या करते हैं, ये लकड़ी पत्थर पूजने से क्या होता है? बोले पत्थर पूजने से हरी मिले मैं पूजू पहाड़, ऐसे कहते। लेकिन नारद जी ने भागवत प्रमाण सिखा देते हैं कि नहीं विग्रह नहीं तो बनाओ, मिट्टी पानी से विग्रह बना करके इस प्रकार विग्रह, इस प्रकार रूप बना करके इस प्रकार पूजा विधि बोले पूजा करो, ये शिक्षा नारद जी ने देते हैं आदि गुरु इस प्रकार से। वो इसे निराकार निर्गुण इसमें कुछ नहीं, केवल सोना ही होता है। जैसे कहते हैं ध्यान करो, एक लाइट लगा देते हैं बस घंटा दोनों सो गया, बोले बड़े ध्यान आराम आराम मिल गए। आजकल बड़े बड़े योग केंद्र सब योगा, बड़े बड़े योगी राज योग टीचर सब सिखाते हैं। योग शब्द का साधारण अर्थ है अंतर क्या होता है, जोड़ना है ना, एक चीज से दो एक दूसरे चीज को जोड़ने को योग कहता है। योग कर लिया उनसे, एक से एक योग करने से दो हो जाए, योग बोलते हैं ना योग। दूसरा उसका होता है वियोग, वियोग मतलब अलग करना, योग मतलब जोड़ना, साधारण अर्थ है ही ना, योग मतलब जोड़ना, वियोग मतलब अलग करना। तो साधारण बोलते हैं योग सिखाते हैं, और योग सिखाते हैं किसी ने योग का क्या परिणाम क्या होता है, वेट कम करना। हम 80 किलो है और 5 किलो घटा दिए योग करके, ऐसे बढ़िया योग टीचर मिला, इसे योग किए। योग तो जोड़ना होता है, तो घटाना कैसे होता है, योग करके घट गया, ये तो योग नहीं किया तो वियोग किया तूने, वियोग किया योग कैसे होगा। सचमुच योग नहीं, योग तो होता है अपने को भगवान के साथ जोड़ना, ये योग होता है। लेकिन आजकल योग तो वेट घटाने के होता है, चर्बी घटाना है ना, तो ये योग में भी वैसे केवल आंख संग बंधन से नहीं, कोई मंत्र होना चाहिए और कोई मूर्ति होना चाहिए। जब तक मंत्र नहीं, मूर्ति नहीं, गुरु नहीं, प्रामाणिकता नहीं, उपाय नहीं, तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रामाणिक विधि से यही सब बताते हैं, किस प्रकार मंत्र होना चाहिए, इस प्रकार आसन प्राणायाम, इस प्रकार भक्ति होना चाहिए, आराध्य भगवान होना चाहिए, उनको आराधना की विधि होना चाहिए, उपादान होना चाहिए, किस प्रकार किया जाए, ये सब होने से फिर जाकर होगा। तभी भी बालक ध्रुव को भी नारद जी ने सब सिखाया, एक एक करके पुंखान पुंखान सब सिखा कर ट्रेंड अप करके भेजे। ध्रुव जी ने जा करके वहां तो पिताजी की राजमहल में नारद जी आए, पिताजी रो रहे थे, उनको बोले कि आप डरो मत, ध्रुव जी से करना कैसे कैसे मैं सिखा कर जाना, चिंता मत करो कोई हो, और वो तो बहुत जल्दी ही आएगा हरि की कृपा से, बहुत जल्दी ही इतने बड़े इतने प्रसिद्ध होकर निकलेगा कि भगवान को बस करके आएगा, आप तो कुछ नहीं उनके सामने, वो जो पोस्टा छिप करके आएगा कुछ नहीं है। आजकल लोग बच्चे बहुत बच्चे हजारों संख्या में एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, कहीं कोई एडमिशन पाने के लिए, एडमिशन पाने के लिए फिर कोई लाखों रुपया खर्चा करते हैं एडमिशन के लिए, फिर 4-5 साल पढ़ते हैं एक छोटा मोटा नौकरी पाने के लिए। आज मैं किसी का घर में गया था, एक बेटा आपको मतलब क्या इच्छा है, क्या बनना चाहते, मैं तो IAS बनू, कलेक्टर बनना, बाप रे बाप, सबसे कुछ है, कोई नहीं चाहता कि सबसे बड़े पदवी है भगवान की भक्त हो जाना, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक भगवान है, कोई इतने बड़े कंपनी है, इतने बड़े मालिक कोई है, अरे उनके हो जाए तो कितने बड़े पोस्ट है। ये सब छोटे मोटे कोई कसवा डिस्ट्रिक्ट के तीन चार दिन पर ही, थोड़ी दिन के लिए फिर निकालते, भगवान तो निकालते नहीं, जिसको पकड़ लेते हैं उनको छोड़ते हैं। तो इस प्रकार कोई भगवान के भक्त होने के लिए कोई जहां एंट्रेंस फीस भी नहीं लगता, एंट्रेंस भी देना नहीं पड़ता, कोई तैयारी नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, फिर भी लोग जाना नहीं चाहते, और जिसमें सारे इतने सारे खर्चा इतने टेंशन वही करना चाहते, पता नहीं क्यों। तो नारद जी ने आज बढ़ाई करते हैं ध्रुव की, ध्रुव आज कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस के मेडिकल के कोई इधर उधर नहीं गया, कहां गया लड़का, राजपुत्र चला गया आज जंगल में भगवान भक्त भजन करने के लिए तरीका सीखा। इसलिए नारद जी आकर के बड़ाई करते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा लड़का वो बनेगा, क्योंकि भक्ति के भजन के यहां से क्वालिफाई होकर आएगा तो उनके समान कोई नहीं सकता। तो इस प्रकार सम्राट उत्तम पाद को ये संवाद बुझा के उत्तम पाद ने राजपाट छोड़ दिए। पत्नी से तो अलग हो ही गए थे, वो लगभग वैराग्य ले लिए राज शासन लेकर के, केवल बेटा की चिंता में पड़े रहे। अनेक दिन तक बस आमदनी केवल ध्रुव के बारे में सोचते रहे। तो इधर ध्रुव का क्या हुआ, कुमार ध्रुव ने चलते 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 कोई खाए नहीं पिए नहीं, कम से कम 350 किलोमीटर हमारा हिसाब से अकेले चलते चलते आ गए मधुबन। मधुबन में आकर पहुंचे, पहुंच करके जमुना जी को देखे, बड़े प्रसन्न हो गए। जमुना जी में स्नान किए, स्नान करके जैसे नारद जी ने बताए थे मिट्टी से पानी डाल करके एक विग्रह इसे बनाए, चतुर्भुज नारायण विग्रह मूर्ति बनाए, नारद जी ने सिखा के से बनाए और वन से फूल पत्ता तोड़ करके माला बनाए, उनका प्रणाम करके सजा दिए और आपने लेके आसन बनाए, टीला पर चटाका पर बैठ बैठ करके उनके सामने बैठ गए। किस प्रकार इंद्र निग्रह करना, आसन प्राणायाम विधि बताते सो की कर करके, और तो कुछ पास में था नहीं पूजा उपकरण, मन में कर लिए सब पूजा, मानसिक मानसिक सब पूजा करा ली करके। अभी याद आया कि नारद ने बताए थे कि बेटा अगर जल्दी फल प्राप्त करना चाहते हो तो जितने मन निग्रह सम दमन जितने कर पाओगे, मन निग्रह इंद्र निग्रह करोगे और मन निवेश कर एकाग्रता करोगे इतने जल्दी फल प्राप्त होगा। तो मन में ठाने की मुझे तो करना ही है, क्यों नहीं बड़े स्ट्रिक्टली करूं, हाँ करना चाहिए। तो उन्होंने नियम लिए, सबसे पहले क्या नियम लिए, पहले दिन से जा करके स्नान तान करके जो विधि सब विग्रह बना कर करने के बाद में नियम लिए, आज से मैंने 3 दिन में एक बार खाऊंगा, त्रि रात हर तीसरे दिन में भोजन। हम लोग दिन में 3 बार खाते हैं, है ना, वो बोले मैं 3 दिन में एक बार खाऊंगा, जस्ट उल्टा, हमारा भजन कैसे नहीं होगा। तो उन्होंने ये नियम लिए, पहले त्रि रात्रे एक बार, 3 रात बीत जाने के बाद एक बार भोजन करूंगा। सो क्या भोजन, साथ में तो कोई किचन बिचिन तो लेकर नहीं गए थे, गैस चूल्हा कुछ लेकर नहीं गए थे, ना कोई होटल मोटल था, जंगल था वो तो कपित्थल वज्रासन, जंगल से फल खाएंगे, फल खाएंगे, अनेक प्रकार के फल मूल मिलता है जंगल में। बोले ये सब फल मूल इकट्ठा करने के हम पास टाइम नहीं, देखिए हम लोग ऐसे तो नहीं करते हैं, कभी कभी भगवान के लिए कोई व्रत नियम करने के लिए हम पास सुजोग मिलता है, वो भी 15 दिन में एक बार, महीने में 2 बार, एकादशी के लिए, है ना, तो एकादशी के लिए हम बोलते थोड़ा व्रत रखो, एकादशी व्रत हरिवास रहे, पाधव तिथि भक्ति जननी जतनी पालन करी, उसके जतने में पालन करो। तो हम लोग कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण व्रत एकादशी करने के लिए तैयार होते हैं, क्या मैं कहूँ, वो एकादशी तिथि भी शर्मा जाती है हमारे पावर को देखकर, क्यों हम व्रत करते हैं, नियम लेते हैं उस दिन कि आज तो हम अन्न नहीं खाएंगे, कि असली तो जो निराहार निर्जल व्रत वो तो साल में एक बार होता है, वो भी बड़े टेंशन में करते हैं, हमेशा तो निर्जल नहीं करेंगे, करना तो निर्जल व्रत पूरा, निर्जल नहीं होगा बोले भाई सजला करो, सजला से नहीं होगा भाई सफला करो। तो सजला सफला से केवल फलाहार से नहीं, फलाहार के नाम से, नाम तो फलाहार है लेकिन फल नहीं है, तो बिल्कुल बनाया आहार होगा, हाँ किसी ने बाकायदा बना करके आहार लाएंगे बोले फलाहार, बोलेंगे फलाहार फलाहार किसी हो गया फलाहार, बाट करे बना करके बिल्कुल छुंक लगा करके बढ़िया सा ला दे उसको बोलेंगे फला, नहीं फलाहारी है ये डोसा लाए फलाहारी, पूरी लाए फलाहारी, हलवा फलाहारी। हम लोग, मैं तो एक किसी घर में गया था एकादशी के दिन, 56 प्रकार के लाकर लगा दिए, ये सब क्या, ना सब फलाहारी है, ना सब फलाहारी, मैं देख करके हैरान हो गया, बोले एकादशी देवी तो भाग जाएंगे हाथ जोड़ कर, इसका मतलब प्रणाम। ये भाई कहां से इतने आइटम बना देते हैं फलाहारी एकादशी आइटम सारे। जो दूसरे दिन में हमारे खाने के लिए जो बजट, उसका कई गुना डबल बजट हो जाता है। एकादशी दिन कई दिन फास्टिंग है ना, उस दिन खाएंगे नहीं, इस दिन सबसे ज्यादा खाने के लिए। एकादशी के इसे बताया गया कि हरि की तिथि है, उपवास, उप मतलब निकट है ना, जैसे प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री मतलब उनके पास उप लगाने से उनके निकट होते हैं। तो वास मतलब रहना, उपवास मतलब उनके निकट में रहना, हरि उपवास में हरि के पास रहना, हरि के भजन करना, हरि के दर्शन करना, हरि कथा सुनना, राधा ऐसा करना, ये सब करने के लिए नाना दूसरे दूसरे काम थोड़ा कम करना पड़ेगा। दूसरे काम क्या करते हैं, तीन टाइम फोंकते हैं पेट में भरते हो, इसमें थोड़ा कम करो, बाकी क्या है। पूरे हम लोग अपना जीवन को, जीवन की जो अवधि है कितने जानते हैं, शुरू होता है जीवन यात्रा, जो गाड़ी चलता है वो गाड़ी का जो स्टार्टिंग पॉइंट, कहां से बनकर गाड़ी चलता है, जन्म से, और कहां से एंड लास्ट स्टेशन क्या है, मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच जितना हुई था हमारी जिंदगी, जीवन की अवधि, इसमें आप सब विचार करके देखो हमारे सबसे ज्यादा समय किसमें जाता है, सोने में। सोने में कितने घंटा सोते हैं आपने, 6 घंटा सोते हैं, 24 घंटा से 6 घंटा ज्यादा कैसे हो गया, बाकी 18 घंटा दूसरे काम में जाता है। सबसे ज्यादा समय देते हैं हम खाने में, सोते ही इसलिए खाना पच जाए, फिर उठकर फिर ढूंढने, सुबह उठते ही फिर ब्रेकफास्ट, फास्ट तो किया ही नहीं, ब्रेक कैसे करेगा, फिर करें। जो कोई फास्ट करता है फास्ट को ब्रेक करे बिना, फास्ट की ब्रेक करते हैं। इसे कहा गया है कि एक भरपेट भोजन आप एक बार आप खाते हैं तो कम से कम 6 से 7 घंटा चाहिए उसको पूरा पचाने के लिए। हमारे पाकस्थली को 6 घंटा से 7 घंटा चाहिए उसको भोजन को पूरा पचा देने के लिए, फिर उसके बाद फिर दूसरे शिफ्ट लेने के लिए रेडी हो पाएगा। लेकिन हम 6-7 घंटा नहीं देते हैं, 4 घंटा में दोबारा डाल देते लो, लो। अरे खत्म नहीं हो, पहले जितना दिया था उसे पचाया नहीं, अरे फिर ले, फिर बोलेगा अरे इतने ओवरलोड दे दिया, अभी जब 8 घंटा लगेगा ना, फिर 4 घंटा फिर डाल। तो ऐसा अगर करेंगे गाड़ी चलेगा कितना, ऐसे ओवर टाइम ओवर ड्यूटी करते रहेंगे, स्टोमाक के ऊपर नॉन स्टॉप काम करता रहता। हम सोचते हैं हम रात को सो जाते हैं, स्टोमाक में लोड करके सोते हैं, वो कहां सो पाएगा बेचारा, उसका काम चालू है, उठते ही सुबह फिर दांत से फिर भर देते। तो इस प्रकार सबसे ज्यादा समय हम देते हैं ठोस पदार्थ खाने के लिए। हमारा शरीर के लिए जो जीवन यात्रा में शरीर पोषण के लिए हमको 3 प्रकार की वस्तु चाहिए शरीर के लिए। एक है शरीर ठोस पदार्थ, एक होता है लिक्विड तरल पदार्थ, और एक होता है वायु। ये 3 चीज हम शरीर को चाहिए पोषण के लिए, है ना, नहीं समझा जी। अभी 3 प्रकार के पदार्थ से शरीर की आवश्यकता है, उनमें से शरीर के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, ज्यादा आवश्यकता किस वस्तु की है हम देखेंगे। लेकिन हम सबसे ज्यादा समय किसके पीछे देते हैं, सबसे ज्यादा टाइम एनर्जी पैसा खर्चते हैं, समय भी देते हैं और उसके लिए व्यवस्था भी करते हैं, किस चीज के लिए, ठोस पदार्थ के लिए, रोटी चावल सब्जी इसके लिए, है ना, इनके लिए तो सर कमाई करते हैं, सर खर्चा उसमें भी करते हैं, खरीद करना, कमाई करना, फिर पैसा लाकर उसको खरीद करना, फिर ला करके काटना, बांटना, बनाना, फिर खाना खाकर पचाना, पूरा 24 घंटा सबसे ज्यादा समय इसी में जाता है ना। और अगर ऐसा हो कभी आपके ठोस पदार्थ खाना को नहीं दिया जाए, मर जाएंगे क्या, 1-2 दिन तो आराम से, अगर ठोस पदार्थ ना दे केवल आपको जूस जूस दे, दूध दे, पानी पेय पदार्थ, मरेंगे नहीं। बहुत ऐसे बाबा हैं जो केवल दुग्धहारी हैं, फलाहारी हैं, पूरा जिंदगी भर दूसरी चीज नहीं खाते, जी जाएंगे बढ़िया से आराम से, है ना। तो अन्न से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तरल पदार्थ ना दिया जाए, लिक्विड या पानी नहीं दिया जाए तो कितने दिन जीते रहेंगे? एक दिन तो जी जाते, दो तीन दिन के बाद फिर गाड़ी नहीं चलेगा। बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है तरल पदार्थ पानी का। एक दो दिन ज्यादा से ज्यादा तीन दिन तक चलेंगे, उसके बाद फिर हवा बिगड़ जाएगी। ठोस पदार्थ के बिना तो महीना दिन सालों भर जी जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके लिए सबसे ज्यादा हम टाइम देते हैं, और जिसके लिए टाइम देते नहीं, कम समय देते हैं तरल पदार्थ के लिए, उसके बिना भी दो तीन दिन जी सकते हैं। लेकिन जो जिसके बारे में कोई सोचते भी नहीं वायु के लिए, उसके बिना कितने दिन बच सकते हैं? दिन क्या, घंटा भर भी, घंटा क्या, दो तीन मिनट में राम नाम सत्य हो जा रहा है ना। नहीं, उसके लिए कोई मेहनत करते हैं, कोई सोचते हैं, कोई समझते कुछ नहीं। तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, कोई नहीं सोचते। तो ध्रुव महाराज ने बोले, नहीं मैं इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति नहीं करूंगा। गुरु नारद जी ने मुझे बताया, जितने इंद्रिय को मैं निग्रह करूंगा, मन को निग्रह करूंगा, इतनी जल्दी मुझे सफलता प्राप्त होगी। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि तीन दिन में एक बार भोजन करूंगा, और वो भी भोजन क्या आइटम, कहते हैं कि कपित्थ बद्रासन, आसन मतलब भोजन, बद्री मतलब बेर के फल, बेर फल जानते, बेर के फल, और कपित्थ मतलब यहाँ होता है कि नहीं, महाराष्ट्र में इंग्लिश में उड़े नाकुल बोलते हैं उसको, जंगल मिलता है बिल्कुल लकड़ी जैसा फल होता है उसके ऊपर, उसके अंदर कपित्थ कवट बोलते हैं, बच्चे समय में हम लोग भी खाते थे उसको, इसे से कट मिला हार कवर होता है उसका। तो और यही दो फल खाते थे, भागवत में दो ही नाम लिखा गया, कपित्थ बद्रासन, कपित्थ फल और बेर फल, यही दो फल को लाते थे। शायद आसपास में वही पेड़ होगा, और दूर नहीं जाने का टाइम नहीं था, पास में ही पेड़ था, तो इसलिए दो फल ले आते थे, ला करके उसको भोग लगा करके और उसी को पाते थे। कितने बार पाते थे? तीन दिन में एक बार, एक कहता दो चार बैर लेकर खा दे, तीन दिन में एक बार, फिर बैठ जाते थे। हम लोग भजन में बैठते हैं, अगर आधा घंटा बैठ जाते हैं तो हाल खराब हो जाता है, बड़ी नहीं बात ज्यादा। वो बैठते थे एक सिटिंग में तीन दिन तीन रात, फिर उठ के जाते थे स्नान दान करके, कभी फल ला कर खाते थे, फिर बैठते थे, फिर तीन दिन तक। तो एक महीना, प्रथम महीना पूरा ऐसा किए, फास्ट मंथ, हर तीसरे दिन में एक बार जाएंगे भजन करने के लिए, बोले टाइम खराब होता नहीं तो, और वो भी वही दो आइटम, कुछ बनाना पकाना ला कर खाने थे, फिर बढ़ जाते। पहला महीना इस प्रकार किए, फिर सोचे बालक ध्रुव ना, ये ज्यादा इंद्र तृप्ति होता है, इसमें इंद्र तृप्ति होता कैसे? भगवान गुरु जी ने बोले कि इंद्र निग्रह करने के लिए। दूसरे महीने में और संकल्प बढ़ा दिए, क्या? छह दिन में खाऊंगा, तीन दिन में, एक बार बैठेंगे छह दिन तक भजन करेंगे, लंबा छह दिन छह रात, हर छह दिन में एक बार फाइन खाएंगे। पर क्या खाऊं? बोले ये कपित्थ और बेर फल लाने में टाइम लगता, ये नहीं है, वो पेड़ में तोड़ के लाना पड़ता है, तो ये नहीं करूंगा, समय भी लगता है। क्या खाऊं? ना, जो पेड़ से अपने आप गिरे होगा, गिरने से फल तो उसको दूसरा कोई प्राणी खा जाता है, तरेली कर बैठता है, बोलते फल नहीं खाऊंगा। क्या खाऊंगा? ना पत्ता खाऊंगा, सूखे पत्ता जो पेड़ से गिरता था, पत्ता सूख जाने से पेड़ से गिर के पड़ता है, उसको प्राणी भी नहीं खाते, वो बकरी और गाय भी जाते हैं, वो भी हरी घास खाते हैं, सूखे पत्ता भी नहीं खाते। तो जिसको कोई गाय बकरी भेड़ भी नहीं खाते, सूखे पत्ता गिरता है, उसी को उठाकर लाते, उसको बोले कैसे खाएंगे, खाने मन लगता था, आप टेस्ट करो, मन किया, आप ऐसे खाएंगे, छह दिन फास्टिंग रह जाओ, फिर देखो पत्ता को तो ऐसे खाएंगे, पनीर सब्जी फिर मान ऐसे टेस्ट में खाते, क्योंकि 6 दिन में एक बार खाएंगे तो सूखा पत्ता भी बड़े डाइजेस्टिव हो जाएगा, बड़े टेस्टी होगा। उसे खा जा पत्ता उठाकर खा गए, इसीलिए उसको एक बार सूखे पत्ता खाते थे, कोई तोड़ना नहीं कुछ नहीं, पेड़ पड़ा है 6 दिन में एक बार। कौन कर रहा है ऐसा? कितने साल की उम्र की बालक?
5 साल
की। कोई नहीं साथ में, माँ नहीं की, भाई नहीं की, बाप नहीं, बहन नहीं, कोई नहीं, अकेले। हमको अकेले में छोड़ दो तो देखना खाने पीने में क्या करते हैं। कभी कभी घर में बच्चा को छोड़ दो, माता जी अगर कहीं चले जाए तो घर में अलमीरा खोल करके, ये खोल करके सारे खा पी कर साफ कर देगा। लेकिन वो अकेले में है, कुछ भी खाए पिए सभी कोई देखने वाले नहीं। लेकिन देखिए इतने निष्ठा है, इतने निश्चय है भगवान के लिए, सोना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, 6 दिन में एक बार सूखे पत्ता घास खाए। दूसरे महीना पूरा 6 दिन में एक बार, 6 दिन में एक बार खाएंगे तो कि महीना में कितनी बार खाएंगे? 4 बार, 4.5 बार, 5 बार के आसपास, 4-5 बार खाए पूरे महीने में, वो भी सूखे पत्ता, सूखे पत्ता। इसमें कोई छुंक लगाना कि थोड़ा भूंज देना, कुछ नमक थोड़ी मिर्ची डाल देना, कुछ नहीं, सादा सूखे पत्ता। दूसरे महीना पूरा हुआ, तीसरे महीना को बोले वो भी बड़ा इंद्रदृष्टि होता है, काम नहीं बनता। गुरु जी ने बोले निग्रह करने के लिए, ये तो मैं खा रहा हूँ 6 दिन में पता, इसमें कि इसे काम बनेगा मुझे नहीं लगता, थोड़ा और कठिन तपस्या करना पड़ेगा, तो तपस्या बढ़ाने लगे। तीसरे महीने में बोले नहीं, हर 9 दिन में एक बार खाऊंगा, 3 दिन और बढ़ा दिया, 9 दिन में एक बार, महीने में 3 दिन खाऊंगा, है ना, 3 दिन महीने में खाऊंगा। तो क्या खाऊंगा? बोले नहीं एक पत्ता भी खाऊंगा, इसमें ज्यादा होगा, क्या खाऊंगा? अब कुछ पत्ता नहीं, पानी पीऊंगा, 9 दिन में एक बार जल पिएंगे, और लगातार एक बार बैठ गए आसन लगा करके जप करने के लिए तो 9 दिन तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 9 दिन 9 रात तक कंटिन्यूअस किए। नारद जी बताए 70 रात्र 70 दिन करेंगे तो उसको आसमान से दृश्य दिखाई पड़ेगा, बोलेंगे उनके लिए तो करते नहीं थे। 9 दिन तक लगातार बैठते थे, 9वां दिन उठ करके थोड़ा सा जमुना जाके स्नान करके थोड़ा अंजलि में, ग्लास वास लोटा नहीं था, अंजलि में पानी पी लेते, फिर आकर फिर बैठ जाते थे। पहले तो बाथरूम जाने का कोई जरूरत नहीं था, इनपुट नहीं था, आउटपुट कहाँ से होता, है ना, कोई जरूरत नहीं था जाने के लिए। तो कोई समय खराब करने का नहीं, नींद में इसे भी नहीं आएगा, और भजन करते। तो तीसरा महीना पूरा बिताए, पूरे महीने में 3 बार केवल पानी पिए थे। चौथे महीने प्रकट हुआ, चौथे महीने में बोले कि नहीं ये भी ज्यादा इंद्र निग्रह होता है, इंद्र दृष्टि होता है, और कठोर तप करना पड़ेगा। चौथे महीना में डेट बढ़ा दी, बोले 12 दिन में एक बार खाऊंगा, 12 दिन में एक बार भोजन करूंगा। सो क्या भोजन करूंगा, अब तो भोजन छोड़ छोड़ कर जाल में पहुंचे, अब क्या खाएंगे? अभी 9 दिन में एक बार पानी पीते थे, बोले चौथे महीने 12 दिन में एक बार सांस ले लूंगा, भाई वाह, सांस लेंगे एक बार 12 दिन में। हम लोग तो 12 मिनट भी नहीं रुक सकते, इतने बड़े प्राणायाम करता क्यों ना हो, बहुत बड़े प्राणायाम आचार्य हो, 12 दिन तक तो श्वास रोक के रख सकता, तो 12 दिन में एक बार सांस लूंगा बस। इतने स्तर को जा चुके थे, कंट्रोल कर लेते अपने आप को, एक बार बैठेंगे खाना पीना सोना छोड़ करके श्वास लेना भी छोड़ दिए, 12 दिन एक बार सांस लेंगे, भाई वाह। अब चौथा महीना इसमें बीता, एक महीना बीत गया, पांचवा महीना आया, अब तो और कठिन कर दी, और बोले वायु बाहर ही बंद कर दी, अब खाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, केवल यही रहा जो सांस ले रहे थे उसको भी बंद कर दिया, उसको भी नहीं, सांस भी लेना बंद कर दे, ढंग सब तो खाना पीना बंद हो चुका था, सांस लेना भी बंद कर डाले और बोले ना, और बैठ करके आसन में खड़ा हो गए। खड़े हो करके एक पैर पर खड़े हो गए, एक पैर पर अंगूठे पर खड़े हो गए। खड़े हो करके सांस तो बिल्कुल रोक दी, सांस लिए ही नहीं। अब पलंग के, अब इतने तन्मय हो चुके थे भगवान में कि वो जो सांस को रोक दिए, सांस नहीं लिए, तो सारे संसार के सांस रुक गए, सारे संसार के सांस रुक गए, सब हाहाकार मच गया। अब पांचवा महीना सब पूरा करके छठा महीना को आए तो ब्रह्मा तक हिल गए, बोले हम मर जाएंगे, सब क्या हो रहा है ऐसे। सांस चोक सबका गला रुंध गया, चोक सब दौड़े भगवान के पास, बचाओ 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 कर। अब भगवान ने दौड़ कर आकर के क्या करेंगे, ये चर्चा कर करेंगे। हरे कृष्ण। अब भगवत गीता 15 अध्याय पाठ करके पूरा कर लिया। ओम अस्सी।